ओम शांति। अभी हमारे सामने गेस्ट ऑफ ऑनर बैठे हैं। मैं चाहूंगी कि सूरत से बहने हमारे मंचासीन मेहमानों का वैसे स्वागत करेंगे। इसी श्रृंखला में जब तक बैच लगा रहे हैं, बीके सुरेंद्र भाई जी जो हमारे बारूच से लाइफ टाइम मेंबर हैं, वो शब्दों के द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे।
ओम शांति। हमारे मेहमानों का स्वागत हो रहा है बेस के द्वारा। इसके बीच में हम थोड़ी ताली से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सभी हमारी प्यारी सी ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन जी का बेच से स्वागत हो रहा है। इससे पहले हमारे रविंद्र भाई जी, संजय भाई जी, गुरमान सिंह जी का स्वागत हुआ बहुत ही अच्छी तरह से। हमारी एक बहन नीचे बैठी है जो मेडिटेशन कराएंगी हमको, आप उनका भी स्वागत करिए। आज एक बहुत सुंदर विषय को लेकर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स हमारे खेलों में किस प्रकार से हमें मदद करते हैं, और इसके लिए हमारे विशेषज्ञ महानुभाव जो काफी समय से खेल जगत से जुड़े हुए हैं और जिनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता और नीतियां हमारे खेलों में हमें मदद करती है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा कुमार रविंद्र भाई जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स विंग का पंजाब जोनल के कोऑर्डिनेटर हैं। हम बहुत तहे दिल से आज के विषय पर और आज के प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हमारे बीच पधारे हैं हमारे आमंत्रित मेहमान डॉक्टर गुरमान सिंह जी जो कि एसोसिएटेड प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन केशव मेमोरियल इंजीनियरिंग हैदराबाद से हमारे बीच पधारे हैं। एक प्रोफेसर है और काफी समय इन्होंने स्पोर्ट्स के साथ निकाला है, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आज के विषय को लेकर बहुत सारा मार्गदर्शन हमें प्रशस्त करेंगे। और इसके बाद हमारे गेस्ट है मिस्टर संजय वर्मा जी, हम सब तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं जो कि फ्रांसलर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, बुक ऑथर है, स्पेशल टॉकर है ऑल ओवर ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर से वो बिलोंग करते हैं। तो आज के विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच बहुत सारे महानुभाव पधारे हैं। आज के विषय से रिलेटेड मेडिटेशन के लिए हमारे बीच हमारी लवनीत बहन जी भी हैदराबाद से पधारी है जो कि थोड़ी देर के बाद मेडिटेशन के लिए हमारे साथ स्टेज पर सहयोग करेगी। और हमारी ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन जी जो कि काफी समय से हमारे बीच स्पोर्ट्स विंग में कार्यरत हैं, उनका भी अनुभव हम लेंगे इस विषय के ऊपर। और अभी मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए माइक हैंड ओवर करता हूं संगीता बहन जी, लेकिन इससे पहले एक बार सब जोर से ताली बजाएंगे। ये जो आपने जो ताली बजाई वो आपके अपने स्वागत के लिए है जो आप खुद यहां पर आए, और जैसे आप नहीं होते तो हम किससे बातें करते, किसको ज्ञान देते, इसीलिए हम तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं माइक देता हूं संगीता बहन जी।
आपके स्वागत में मुझे एक लाइन याद आ रही है जो आप सबके लिए, हर सुबह आती है एक खुशी लेकर, हर सुबह आती है एक खुशी लेकर और शाम जाती है खुशी देकर, और आज की शाम आई है कुछ खास हम सबको साथ लेकर। तो आज का जो विषय है द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन एथिक्स, इसके बारे में की नोट हमें रविंद्र भाई जी बताएंगे इस विषय पर, फिर इसके आगे हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हैंड ओवर टू रविंद्र भाई जी।
ओम शांति। बस ये जो शब्द हम यहां सुन रहे हैं, दिन में वार वार सुन रहे हैं, आपस में मिलते हैं, ओम शांति कहते हैं, वास्तव में इस शब्द का रहस्य अगर जान लिया तो हमारे भीतर जो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एथिक्स इन स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। वास्तव में स्पोर्ट्स की जो एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके अंदर एथिक्स होना इस तरीके से है जैसे संसार में ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, इसी तरीके से, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल डाइट, मेंटली एक्सरसाइज, थॉट रूप की जो हमारी एक्सरसाइज, उसके लिए हमारे जो प्लेयर्स होकर के गए हैं, जिनके नाम से भारत में हॉकी के जादूगर सर ध्यानचंद जी तालियां बजाएं उनके लिए, किस तरीके से उन्होंने हॉकी के जादूगर बने। और आप जानते होंगे जब हिटलर ने उनकी गेम देखी तो उन्होंने क्या कहा था, हम कर्नल लेते हैं आपको, वो हैं हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड एथिक्स। वो डगमग नहीं हुए। हमारे प्लेयर्स मिल्खा सिंह जी वो हो गए हैं। हमने इन महान योद्धाओं को पढ़ना चाहिए, इन्होंने क्या किया। अगर हम 10% भी उस पर चलेंगे तो वास्तव में आप जानते होंगे जब मूवी बनी इनके ऊपर, जब इनसे पूछा कि आप क्या लेंगे अपनी हिस्ट्री सुनाने के, इनका कुछ नहीं, एक रुपया भी नहीं लूंगा मैं। अदरवाइज जो महान लोग होते ऐसे, वो अपनी हिस्ट्री बताने के लिए भी कितना पैसा मिल जाएगा उनको। ये हैं उनके रोल, उनके एथिक्स, जो भारत के थे, कहीं बाहर के नहीं थे। उन्हीं के साथ साथ अगर हम पढ़ाई के विषय को ले लें तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी जब वो मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए गए, क्वेश्चन पेपर आया, देखा उनकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने नंबर 1 से लेके नंबर 13 तक लिखा था पेपर पे, टोटल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 10। उन्होंने क्या किया, नंबर 1 से लेके नंबर 13 तक आंसर शीट पे उतारा, मैथमेटिक्स का पेपर था, और नीचे लिख दिया सिलेक्टेड एनी 10। लिख दिया सिलेक्टेड एनी 10। वो बाद में जाकर के क्या बने, स्पिरिचुअलिटी के गुरु बने, स्वामी विवेकानंद जी उन्हीं के शिष्य बने। कहते हैं जब स्वामी विवेकानंद उनके द्वार पर गए, नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कौन, बोलते हैं यही तो पूछने आया हूं मैं, कौन, स्पिरिचुअलिटी। ब्रह्मा कुमारीज में आकर के हमारे प्लेयर्स, कोचेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जुड़े हुए लोग क्या ले सकते। कहा जाता लाइफ इज ए गेम वी प्ले इट, लाइफ भी एक गेम है, हम प्ले कर रहे हैं। अब बात आती है ये घर में भी प्ले कर रहे हैं, माँ बाप के साथ प्ले कर रहे हैं, परिवार के साथ प्ले कर रहे हैं, जॉब में, गेम में, हर जगह प्ले कर रहे हैं। बात आती है कि वहां पर स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स हमारे पास हैं या नहीं, ये जरूरी है हमें। अदरवाइज प्रैक्टिस करेंगे, यहां आपको सब कुछ बताया जा रहा, आपकी प्रैक्टिस ग्राउंड से ज्यादा मन में होती, और वास्तव में हम मन तौर पर जब भिन्नर बन जाते हैं। बीच में एक 30 सेकंड आपको बात सुनाना चाहूंगा। आप सभी 5 तारीख जहां पहुंचे तकरीबन, हम भी आपके साथ पहुंचे। जम्मू से मेरे पास कुछ भाई बहने थे 10-12, कुछ मुझे नीचे का सामान था मेरे पास, लेकिन एक बड़ी अच्छी परीक्षा हुई, मजा आ गया उसमें। जो मेरे पास एक छोटा बैग था, वो बैग सामने रखा कि मैं इसको ऐसे उठा लूंगा और सारा सामान नीचे किया और वो बैग मेरी सीट पे रह गया। उसके अंदर मेरा सब कुछ है। आज की लाइफ में जो भी सब कुछ होता है, मेरे एटीएम उसमें है, अदरवाइज आधार, अदरवाइज जो भी होता है सब उसमें था। अब ट्रेन मेरे सामने वहां से निकल गई। अब बाबा जो यहां आपको बताया जा रहा है, बाबा जो मेरे पास आने वाले थे, कुछ बहनें मेरी बैठी हुई हैं यहां, इनको बस पे बिठाया, यहां फोन कर दिया कि उनको ऐसे ऐसे अकोमोडेशन दिलाना, मैं आता। स्टेशन मास्टर के पास गए, वहां का जो आरपीएफ होता है उनके पास, ट्रेन अभी पहुंची अगला स्टेशन पालनपुर, उन्होंने मैसेज कर दिया, ट्रेन पहुंची, बैग, उनको फोन आ गया कि बैग हमने रिसीव कर लिया। मुझे बोले आप जा सकते हो। हमने कहा अभी बैग लेके ही जाएंगे, क्या करेंगे। हमारा संगम भवन आश्रम है आबू रोड में, वहां से हमारे भाई हैं, वो ले गए वहां। वहां जाकर के बैठे, भोजन किया 12 बजे, 1 बजे ट्रेन आनी थी, मुझे बैग मिला। और ड्यूरिंग दैट टाइम हमने किया क्या, जो आपको यहां बताया जा रहा है। बाबा का बैग है, ये एक परीक्षा है कि मेरे अंदर धैर्यता कितनी है। बाबा कहता कुछ भी हो जाए बच्चों का नुकसान नहीं होगा। अब ट्रेन 35 मिनट के बाद वहां पहुंच रही है, वहां पर आरपीएफ के जवान आए हैं, उन्होंने बैग जगह से उठाया है, सेम एज इट इज बैग हमारे पास आ गया। यही चीज आप सभी ने करनी है, यही एथिक्स हैं हमारे। नहीं तो उसमें पैसे उसमें थे, यहां जो चेक देना वो उसमें था, मेरे कार्ड्स उसमें, जो भी होता है, मतलब अभी भी अभी जेब में लेके घूम रहा हूं मैं छोटी सी ए सब कार्ड इसी में थे। आप मेरे साथ जो बहने हैं इनसे पूछ सकते, मेरे चेहरे पे कुछ आया, आराम से पहले इनको गाड़ी पे बिठाया। ये प्रैक्टिकल आपको बता रहे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी भारत में नरेंद्र थे, जब वो शिकागो में गए वहां पर उनको सिर्फ 5 मिनट दिए गए और उन्होंने कहा 3 मिनट ही मैं लूंगा, लेकिन उसके बाद वहां का स्टेट सेक्रेटरी उनको 1 घंटा उनको दिया। ये सारी बातें मैं समझता हूं आपने पढ़ी हुई सुनी हुई हैं। ये स्पिरिचुअलिटी प्लेयर्स के अंदर बहुत जरूरी है। हमारे सचिन तेंदुलकर जिनको हम कहते हैं क्रिकेट का भगवान हैं, उन्होंने भारत का नाम किया है, लेकिन 96, 97, 98, 99 पे गलत भी उनको आउट दिया हुआ है। जो क्रिकेट में देखते होंगे उनको पता होगा, हम खुद क्रिकेटर रहे हैं इसलिए इन चीजों को देखा है। तो उन्होंने कभी अंपायर की तरफ देखा भी नहीं, देखा कभी नहीं। तो आदमी थोड़ा ऐसे देखता है, नजर थोड़ी है। ये कौन सी चीज है, ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है एथिक्स। तो जब उनके अंदर हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकते। हम तो अब ब्रह्मा कुमारी के ये ज्ञान सरोवर से बहुत मूल्यवान चीज लेके जा रहे हैं। रियली आपको बताएं, ये वो चीज है, मानो तो गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी। जो जहां पर आपको बताया जा रहा, आप नजदीकी सेवा केंद्र पे जाकर के आप थोड़ी सी ये हेल्पलाइन अपने साथ रखेंगे। जब भी कभी आप एडमिनिस्ट्रेटर रूप में जाते हैं, आप एजुकेशन देते हैं या प्लेयर्स के साथ, आप उनको बोलो जाओ ब्रह्मा कुमारीज आश्रम, वहां जाकर के आप ब्लेसिंग लेकर के आओ। हमारी पीवी सिद्धू जी जब वो मेडल लेकर के आई थी, गोपी चंद जी जब वो खेल करके आई तब उसको बोला अभी तो आप मोबाइल ले सकती हो, उससे पहले कभी मोबाइल नहीं लेने देते थे, पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो उनको ये हैं। अगर हमारे कोचिस प्लेयर्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन हमें जब कोई प्लेयर्स की बात है कुछ ऐसा है बहुत कूल माइंड होकर के सुनना है, सब कुछ सुनना है उसका। हमारे जम्मू में हमारे पास एक बहन आती एमफिल कर रही थी, 1600 थे, 16000 पीएचडी एआर के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, एक साल पहले पेपर दिया उन्होंने, और पेपर देने के बाद एआर के लिए उसने भी दिया, 80 पास हो गए, 80 पास में वो भी हुई, तब उन्हें उसने हमारे पास आश्रम में कहा भैया मैं 80 की मैं आ गई हूं लेकिन लेने हैं सिर्फ 8 एआर लेंगे तो कुछ हो सकता है। मैंने कहा कमाल है, हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उससे ऊपर और सिफारिश कौन सी चाहिए। बोलती ठीक है, बाबा के कमरे में गई, सुबह उठती उसका बाइवा हुआ 18 को, शायद 2 साल पहले शिवरात्रि थी, उसका 17 को वाइवा हुआ, 19-20 को रात को 10:30 मुझे मैसेज आया उसका सिलेक्टेड एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार आईएएस की पोस्ट होती है। तो वो आज भी इतना विश्वास करती है। हमने उनसे पूछा बाइवा में क्या पूछा, बोलती बाइवा में पूछा कि आप एआर हैं, आपके पास कोई आया आप कैसे मदद करेंगे, जो भी उनके पास। बोलती सबसे पहले मैं मदद कर सकूं या ना कर सकूं लेकिन कोई भी मेरे पास आया है मैं उसकी बात जरूर सुनूंगी, बस इतना ही वाइवा हुआ। मैं आप सभी के बीच में इस बात को रखना चाहता हूं, हमारे पास कोचिज आएंगे, हमारे पास प्लेयर्स आएंगे, बाकी बाद में हम बिठा के उनकी बात जरूर सुने। बात सुनने से उसको हल मिला ना मिला मगर उसको खुशी हो गई, मेरी बात तो सुनी। ये हर फील्ड में हमें इसकी जरूरत है, इस पे हम थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस हो रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं लाइफ इज ए बुक वी रीड इट, जीवन एक किताब हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे पहले आपसे कहा लाइफ इज ए गेम वी प्ले इट, हम खेलते हैं। तो जीवन को ही हम इस तरीके से खेलें कि हम स्पिरिचुअलिटी एथिक्स को इतना अपने पास रखें कि हमें कुछ भी मिले ना मिले लेकिन ये हमारे पास जरूर हैं। तो ये आप सभी ने एक पढ़ाई के अंदर कहानी आती थी बाबा भारती, उनकी कहानी अगर सुनी हो, उनका सबसे अधिक जैसे किसान को अपना प्रेम खेत हरियाली से होता है, हरेक को इसी तरीके से प्रेम होता, बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्रेम था, और खड़ सिंह डाकू रास्ते में लाचारी हालत वाला बन करके बैठ गया और वो नीचे उतरा और उसका घोड़ा छीन करके बैठ गया। बाबा भारती ने क्या कहा, हे खड़क सिंह घोड़ा ले जा कोई बात नहीं है, मेरी बहुत प्रिय चीज है, लेकिन किसी को ये मत कहना कि मैंने बाबा भारती को ऐसे धोखा दिया। ये गेम के अंदर हमें सचिन तेंदुलकर जी को सीखना है कि हमें सेंचुरी इतनी मारी बात मत पूछो लेकिन कभी किसी ने आउट दे दिया तो आंख उठा करके नहीं देखा। हम अपनी मेहनत और लगन से आने वाले टाइम में ये हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें गोल्ड क्या गोल्डन दुनिया ला रही है, ये गोल्ड क्या गोल्डन दुनिया ला रही है, इसके ऊपर तो मेहनत करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अभी और हमारे स्पीकर्स काफी होंगे, मैं समझता हूं हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी ने हमें सुना, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। हमारे बीच में क्या संजय वर्मा जी आ चुके हैं क्या? संजय वर्मा जी आगे? सुशील कुमार नवज्योति फाउंडेशन नहीं आए, चलो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रविंद्र भाई जी ने जो क्या एथिक्स हैं हमारे वैल्यू एजुकेशन में, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी और क्या नैतिकता है, तो इस पर आगे हमारे इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर गुरनाम सिंह जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन केशव मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद से हैं। तो जो टॉपिक कवर किए आप, इसका आपका क्या विचार है, आप हमें बताएं क्या इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी एंड एथिक्स की। बोला उसको बोली बात।
ओम शांति। टू बी फ्रैंक, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। ब्रह्म कुमारी सेंटर को ये मेरी पहली विजिट है, हैदराबाद में मैं रहता हूं, मैं कभी गया नहीं हूं। मैं बहुत कट्टर सिख हूं, किसी धर्म में ये बोलने के लिए आदमी को जज्बा चाहिए, किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी धर्म में, सभी धर्म यही सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं यहां ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अमृत वेला, मैं थोड़ा सिखिज्म की पहले थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूं, फिर एथिक्स पे आता हूं। मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूं, जनरली स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में होते हैं और क्लास में पढ़ाना वगैरह इससे कुछ होता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से जो धर्म के बारे में, एथिक्स के बारे में जो है वो बताना आइडिया शेयर करूंगा। सिखिज्म में यही बताया गया है कि अमृत वेला वडियाई विचार नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि आप सुबह उठकर जो विचार करते हैं, जो मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया है। और मैं ये समझता हूं कि जो सवेरे उठ के ध्यान लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें है कि ये अवस्था आ जाती है परमात्मा है, और जब हाजिर नाजिर जानते हैं तो फिर वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। हम यहां पे स्पोर्ट्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कई जगह पे सिलेक्शन गलत हो जाता है, कोई अपने लोगों को ले लेते हैं, सिलेक्शन में ट्रेनिंग में बहुत सी जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन अगर उन लोगों को, जैसे सर ने बताया कि जो हमने कोचेस से एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं प्लेयर से, उनको सेंटर में ले जाके अगर वहां पे कुछ ब्रेन वॉश किया जाए तो ऐसे गलत काम नहीं होंगे और मेंटली स्ट्रांग होंगे, ये बहुत जरूरी है, मैं इस चीज को मानता हूं। जहां पे प्रैक्टिकली फिलॉसफी बहुत है, बहुत से धर्मों ने बहुत सी फिलॉसफी दी है, कहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल में होता है वो इम्पोर्टेंट है। यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, सब सेवाभावी लोग है, कोई यहां पे सैलरी एम्प्लॉयज नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो स्पोर्ट्स के हिसाब से मैं यही चाहूंगा कि जितने भी यहां पे डिग्निटरीज आए हैं स्पोर्ट्स के, जरूर इस चीज का फायदा ले, कोचेस को, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को और प्लेयर्स को जरूर अपने नजदीकी सेंटर में ले जाए, जहां पे उनका ब्रेन वॉश हो, जहां पे वो कोई गलत काम ना करे, क्योंकि लाइफ ऐसी है। एक स्पोर्ट्स के उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, कोशिश करता हूं ये करने की, कि कैरम इट्स वेरी सिंपल गेम, हम सब लोग खेलते हैं, तो कैरम हम जिस एंगल से मारते हैं और जिस स्पीड से मारते हैं उसी एंगल से और उसी स्पीड से वापस हमारे पास आता है, जितने भी कैरम खेलते हैं उनको पता होगा। तो लाइफ ऐसे ही है, जो दोगे उसी हिसाब से हमारे पास वापस आने वाला है। तो तो हमें इस चीजों में बिलीव करना चाहिए। सर ने जैसे बताया कि सर का बैग वहां पे रह गया था, पर ऊपर वाले पे इतना भरोसा था तो वो आ गया। तो हमें इस चीज पे बहुत भरोसा रखना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। मैं शुक्रिया गुजार हूँ सभी का यहाँ पे जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, स्पेशली राजेश सर जिन्होंने हमें यहाँ पे लेके आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।
आप सबके चेहरे पर एक चीज मिसिंग है, बीच में मैं कह देती हूँ, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता, लेकिन जो लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, जो लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए, क्योंकि हम फोटो में खिंचाते हैं एक पल के लिए, लेकिन सदा के लिए खुश हो जाएं, ऐसा खुश रहें कि आपको देख के और भी खुश हो जाएं और आपकी खुशी देख के उनके दुख दूर हो जाएं। तो अभी इसी श्रृंखला के बीच में अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन जो आप सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला कर रहे हैं, और इसको जीवन में अपने जीवन में धारणा करनी है कि हमें रोज मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन जो मन का तनाव है वो दूर करता है, मेडिकेशन शरीर की बीमारी दूर करता है, ये मेडिटेशन मन की बीमारी दूर करता है। जो स्वयं परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तभी परमात्मा से कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि बिना कनेक्शन के मेरी आवाज भी नहीं आएगी माइक से, बिना कनेक्शन के लाइट भी नहीं आएगी। ऐसे ही परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की विधि है अपने को सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को आत्मा निश्चय करना। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो इसी श्रृंखला में मैं लवलीन बहन से कहूंगी कि वो मेडिटेशन की ड्रिल आपको कराएं। सभी को, सब एकाग्र होकर बैठेंगे सीधे एकदम, अपने पेन कॉपी सब साइड में रख के एकाग्र होकर अपने को सेल्फ रियलाइजेशन करके परमात्मा से योग लगाएंगे।
शांति। अभी कुछ क्षणों के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। कह दें अपने आप से कि अगले ये 5-7 मिनट मैं पूर्णतः इस क्षण को अनुभव करूंगी। आई विल बी इन द प्रेजेंट। I tell my eyes to remain focused at one point. I, the soul, I, the ruler. I tell my ears, बाहर से कोई भी आवाज आए वो मेरा अटेंशन नहीं खींच सकती। मैं पूर्णतः यही हूं। अभी कहें अपने आप से, ये जीवन माय मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ, आई मेक इट पर्पसफुल एंड वैल्यूएबल by expressing my spiritual virtues. I am a peaceful being. I, the eternal living light, ek chamakta sitara, ek divine energy, अनुभव करें मस्तक के बीच मैं चमक रहा हूं। एंड इस जीवन में अपनी स्पिरिचुअल मूल्यों को एक्सप्रेस करना ही मेरा पर्पस है. व्हेन आई लिव माय लाइफ इन माय एवरी एक्शन क्लोज टू माय वर्चुज, बीइंग पीसफुल, being loveful, being kind, meri energy pure hai, powerful hai. Visualize the light emerging from the forehead and spreading throughout the body. Feel the energy that makes this body alive. I live my life through this body and being close to my true nature, एथिकल होना मेरे लिए नेचुरल है. दुनिया में परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने वर्चुअल्स को एक्सप्रेस करती हूँ. आई द सोल I am peaceful naturally. It is not a weakness. It is not a moral pressure. It is my natural nature. Being loveful is my spiritual quality. चाहे घर हो या ऑफिस हो, आई टेक इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ शोइंग एंड लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ. इट इज ओनली देन Can I contribute in creating a better society, in creating the golden age? Visualize करते रहे जैसे जैसे I come closer to my true identity. Of being a peaceful soul. The energy I radiate is increasing. और चारों तरफ एक वायुमंडल शांति का बनता जा रहा है. Just focus. And see yourself and be yourself. See yourself as the star, the living light, and be yourself as the virtuous, the peaceful, the full being. Visualize your light spreading from the forehead and जैसे सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैलती है, ऐसे ही मुझसे ये एनर्जी मेरे चारों तरफ फैल रही है. I peaceful. I am powerful. Experience this energy. Just let your mind, that is your ability to think positive, and your intellect, your ability to create a vision of a powerful, peaceful world, be in harmony, because I radiate this energy. I am peaceful inside, hence I am peaceful in my every action outside.
शांति. कैसा लगा सभी को? फीलिंग रिलैक्स्ड और फीलिंग स्लीपी. ये है योग का प्रयोग. अगर हर एक घंटे में हम एक मिनट भी इसका अभ्यास करें तो हम स्वयं पर नियंत्रण कर और ऊपर भी कर सकते हैं. ये है योग का प्रयोग. आगे की श्रृंखला में हमारे बीच में मिस्टर संजय वर्मा जी. ही इज अ फ्री लांसर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बुक ऑथर, स्पेशली टॉकर ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर से हैं. तो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है फॉर प्लेयर्स एंड कोचेस फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एथिक्स. तो हमारे पास दो लोगों ने जो पॉइंट्स कहे कि मन ही मन हमें प्रैक्टिस मोस्टली करनी है, जो रविंद्र भाई जी ने कहा, कई सारे एग्जाम्पल दिए हमें कि कैसे इन महाअनुभव ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को शामिल किया और विश्व में एग्जाम्पल बने. क्यों ना आज हम आज से ये संकल्प करें, हम जो औरों को एग्जाम्पल देते हैं आज, क्यों ना हम वो एग्जाम्पल बन जाएं, हम भी दुनिया में एग्जाम्पल बने. तो क्या जरूरत है नैतिकता की स्पिरिचुअलिटी में? इन पॉइंटों पर अभी विचार विमर्श करेंगे मिस्टर संजय वर्मा जी.
ओम शांति ओम. मैं संजय वर्मा. देखिए, मुझे बहुत मेडिटेशन या उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं खिलाड़ी रहा. गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने यूपी खेला हॉकी में, और वहीं से फिर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आया. 10 किताबें भी मैंने लिखी. खिलाड़ी का भी मेरे पास थोड़ा सा अनुभव है. एज ए स्पोर्ट्स प्रमोटर भी थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं, और जो भी ओवरऑल टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसको एनालाइज करता हूं. तो पहली बात तो मैं साधुवाद दूंगा इस ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि खेल के दृष्टिकोण से शायद ओवरऑल जो सबसे बड़ा फोकल पॉइंट था इनका, आपका राजयोग एवं खेलों में जीवन प्राप्त करने हेतु सकारात्मक मानसिकता का विकास, डेवलपिंग पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ विनिंग इन स्पोर्ट्स थ्रू राज योगा मेडिटेशन. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट चूज किया गया. मुझे तो नेशनल उस पर बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस देखने को ऐसे मिलते हैं कि हम इस पर विचार करें, क्योंकि आज के एज में अगर इन शॉर्ट कहें तो हमारे पास प्लेयर बहुत ज्यादा है. सीधे सीधे हम खेल पे ही आते हैं. प्लेयर बहुत ज्यादा हैं, टैलेंट भी बहुत ज्यादा है, और स्किल टैलेंट है. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है या चूक हो जाता है. तो हम पदक तालिका में खराब स्थिति या औसत दर्जे पे आ जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको लगता है कि ये टॉपिक सबसे स्ट्रांग टॉपिक था स्पोर्ट्स में, जिसको शायद कहीं विचार नहीं किया जाता। तो मैं इस विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा पूरी ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये एक बहुत बड़ा सोच के मंथन करके ये बनाया गया होगा ये टॉपिक। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, ज्यादा नहीं, 3 ओलंपिक को देखें, पेरिस को ले लें, पहले इसके टोक्यो ओलंपिक लिया उसको ले लें, उसके पहले लंदन ओलंपिक ले लें, तो आपको लगेगा परफॉर्मेंस बहुत सुधर रहा है। कारण क्या है? मेडिटेशन का ही पावर है इसमें जोड़ा गया। क्योंकि आजकल का जो स्पोर्ट्स है, सिर्फ स्पोर्ट्स क्या, हम साइंस भी लिखते हैं इसलिए बोलने आप बता दें आपको, 75% स्किल पे डिपेंड करता है, लेकिन 25% आपका मेडिटेशन पे है कि आप कितना एकाग्र हैं, कितना दृढ़ है, कितना आपके में रेजिस्टेंस पावर है, कितना आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं आते हैं और निकल जाएं तो आप जीत जाएंगे। और उसका एक उदाहरण ये भी दूं आपको कि ज्यादातर आप देखेंगे ओलंपिक को लें, ओलंपिक को मैं इसलिए बता रहा हूं कि ओलंपिक सबसे बड़ा इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है, तो ज्यादातर इंडियन प्लेयर अगर गौर करेंगे आप, जब कोई भी खेल हो, ज्यादातर खेल 15-16 इवेंट मान लीजिए, अच्छा खेलते हैं, लेकिन परफॉर्म करते समय क्या होता है, प्री क्वार्टर फाइनल, औसत एक बार बता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर गेम को नहीं ले रहा हूं, प्री क्वार्टर फाइनल या क्वार्टर फाइनल पर आके उलट जाते हैं। कारण क्या है? ऐसा लगता है मेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अच्छे नहीं हैं या हम औसत दर्जे में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्री क्वार्टर फाइनल में अगर आप स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कोचेज भी मैं देख रहा हूं, प्लेयर भी हैं हमारे बीच, हमारे बगल के आशीष जी जिमनास्ट के खुद प्लेयर हैं तो मैं देखूंगा कि वो खेलते खेलते कहीं कहीं चूक हो जाती है। प्री क्वार्टर फाइनल में जो टीम पहुंचती है और जो फाइनलिस्ट है, उस बीच आपको शायद बहुत अजीब लगेगा, 18:20 का ही अनुपात होता है। 18 प्री क्वार्टर फाइनल में जो पहुंचा उसको अंक दे सकते हैं, फाइनल में जो मेडल जीते या फाइनल में पहुंचे उसको 20 अंक। स्किल लगभग सबका बराबर है। अंतर कहां आता है कि आप 1-2 मिनट में सामने वाले अपोनेंट को टेक्निकलिटी पे काट दें या उसकी कमी को भाप लें, तभी भाग सकते हैं। आप पूरी तरह से मेडिटेट करते हो या योगा से संबंधित हो, एकाग्रता से जो भी आपका उसके लिए आप प्रयत्नशील हो, तो 1-1.5 मिनट में आप उसको देख लें कि यहां से कमजोर है, इसको यहीं से उड़ा देना है। बॉक्सिंग हो तो भी, रेसलिंग हो तो भी, हॉकी हो तो भी, फुटबॉल हो तो भी, मतलब 2-4 मिनट में आप देखेंगे लड़ाई मेन स्किल की तो है ही है, दृढ़ की तो है ही है। एक साइंटिफिक अप्रोच भी आया कि अब ऐसा दिन आ गया है कि आपको मैंने पटक दिया एक कुश्ती में पहले, आप फिर कहीं सेमीफाइनल में मिले आधे घंटे या 1 घंटे बाद, तो कोचेज इतने साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं कि जो हरा हुआ कोच है, जो हरा हुआ प्लेयर है, उसका कोच अगर 1-1.5 मिनट में उसने वॉच कर लिया तो बता देगा कि इसको यहां उलट दे, ये मिलेगा फिर क्वार्टर फाइनल में या फाइनल में, क्योंकि इसकी एक कमी है। तो आदमी उसी पे हैमर कर जाता है। हर आदमी में कोई इनकमी कमी होता है, अच्छाई होती है, कमी भी होता है। अच्छाई मीन्स खेल में क्या है, कहीं ना कहीं कोई भी टीम ऐसा नहीं है हर तरह से बहुत टफ हो, कहीं ना कहीं उसकी एक वीकनेस पॉइंट होती है, उसको आप पकड़ लें, अपने अच्छे चीजों को और उभार दें। ये आप जैसे भी मेडिटेट करके हो या योगा करके हो, तो मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के प्लेयर स्किल के कारण नहीं आ रहे हैं, वो कंसंट्रेशन के कारण आ रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण आ रहे हैं, वो थोड़ा इन्वायरमेंट देख के सामने देखा कि अरे बहुत है इसका लंबा चौड़ा प्लेयर है, इसको हम कैसे पटक देंगे, या ये बहुत स्मार्ट है। तो आदमी कहने के लिए बहुत आसान है डैश पे, लेकिन जब गेम में आइए, शूटिंग रेंज में आइए या रिंग में आइए, तो बहुत सारे प्रेशर रहते हैं दिमाग में, तालियों का गड़गड़ाहट, बिजली की सनसनाहट, सब कुछ देखने को मिलता है, उसमें प्रेशर में आ जाता है सामने वाले का रूप रंग आकार देख के भी। तो उससे हम तभी वर सकते हैं जब थोड़ा सा स्ट्रांग रहें। तो ये एक पहला अप्रोच है इसका, 75% स्किल प्लस आप साइकोलॉजिकली तैयार हों। आप थोड़ा सा मैं मुझे टॉपिक पहले जगवीर सर ने दिया था पेरिस ओलंपिक का जो अभी हुआ है, उसको मैं आपको शॉर्ट में, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2-3 मिनट ही लूंगा, तो देखता हूं कि आपको बताऊं देखिए इसमें भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं। अगर आप गौर करें तो रिकॉर्ड में भी हम थोड़ा सा पदक में कमजोर गए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में हम लोगों ने मेडल ज्यादा लिया था। लंदन में भी काफी सुधरे, यानी कि तीन ओलंपिक में हम काफी सुधर रहे हैं, और 16 ऐसे खेल हैं जिसमें हमारे परफॉर्मेंस प्री क्वार्टर फाइनल से ऊपर रहे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में पहले भी कहा, प्री क्वार्टर फाइनल और फाइनल दोनों में 18-20 का ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। प्लेयर दोनों बराबर हैं, लेकिन वही है कि अब कैसे हमने उन अपनी अच्छाइयों को थोड़ा अच्छा नहीं किया और उनकी कमजोरियों को कैसे भापा नहीं, तो यहीं पे हम गड़बड़ हुए। अब देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, बहुत छोटा छोटा लिखा तो मैंने ज्यादातर, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नीरज चोपड़ा का कभी जैवलिन थ्रो भारत के लिए सपना था कि हम पदक जीत जाएं। जैवलिन थ्रो में कंसंट्रेशन भी है, शारीरिक फिटनेस भी बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन भी है, सब कुछ है। इस इवेंट में इंडिया कभी फाइनल में भी नहीं पहुंचती थी, मैं रिकॉर्ड कहिएगा तो मैं बता सकता हूं, कभी भी इंडिया नहीं पहुंची। लेकिन इधर इंडिया का पावर बढ़ा, अगर हम नेशन व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसने उस इवेंट में मेडल लिया, गोल्ड मेडल लिया पहले तो, जिसमें इंडिया का सपना था, क्योंकि वो हर गेम का जैवलिन थ्रो हर चीज में ही समाहित, हर व्यायाम से लगाए, स्किल से लगाए, सभी चीजों में समाहित है, और उसने जीता ही नहीं गोल्ड मेडल। फिर इस बार आया, निश्चित सी बात है इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, उसके परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता है। लेकिन ठीक है, कभी कोई साथ का आदमी उसको टिप्स इन्होंने ही दिया था, पाकिस्तान के प्लेयर को पहला टिप्स इंडियन जेवलर ने ही दिया था कि ऐसे करो आप, क्योंकि दोस्त हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन चूंकि वार हुआ खराब रहा, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है तो एक प्यार का धागा कहीं ना कहीं टंगा होता है, और खेल में ज्यादा है ये सब चीजें। तो उसने टिप्स इनको दिया था और वो सुधर गया काफी, कुछ अपना अच्छा कोचिंग किया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा, ये एक अलग विषय है। कभी कभी हो जाता है बराबर का प्लेयर भी उलट देता है, खेल में सब है जायज, गुरु भी कभी कभी शिष्य से उलट जाता है। अच्छे अच्छे पहलवान भी मैंने देखा है कि जो वर्ल्ड के टॉप पहलवान है वो कहीं गांव के कुश्ती में घबराते हैं, क्योंकि सामने वाले गांव में गए तो उनको ये नहीं चलेगा कि इंटरनेशनल, अगर आप रिंग में उतर गए तो, क्योंकि सामने वाले को अपना वीडियो देखे हैं न उसकी कमजोरी मापते हैं, तो घबराने से डर, ये लोग भी प्रेशर में रहते हैं कि नया प्लेयर है हम जानते नहीं इसको, उलट देगा ये तो। होता भी अक्सर ऐसे है कि एक नेशनल प्लेयर हार गया एक छोटे मोटे दंगल में, तो लेकिन होता है, ऐसा खेल है कह ले। इसी तरह देखेंगे मनु भाकर, लेडीज पे बहुत सारा टैलेंट उठाया जाता है क्वेश्चन मार्क, मैंने बहुत गौर से मेल फीमेल को एनालाइज किया है, स्पोर्ट्स में भी साइंस में भी। कभी नहीं सोचा जाता था कि तो बस खाना बनाने वाली हैं लोग, लेकिन क्या आज स्थिति है मनु भाकर का देखिए, शूटिंग में उसको मेडल मिलता है, शूटिंग बहुत बढ़िया मेडल उसको मिला और दो मेडल उसने जीता, और यही मनु भाकर है जिसको पिछला मेडल भी इसको मिल जाता, लेकिन ऐन वक्त पे राइफल ने इसके धोखा दे दिया, और उस समय इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। इस किसी लड़की का मजाक इंडियन मीडिया ने भी उड़ाया था कि इनका पिस्टल खराब, राइफल खराब हो गया, लेकिन संयोग होता है कभी कभी, इक्विपमेंट जो है जब किस्मत खराब होता है कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, इनका खराब हुआ। मनु भाकर इस बार उसने किस्मत को भी किनारे कर दिया, अपना परफॉर्मेंस दिया, एक नहीं दो मेडल जीता, और दो ही नहीं जीता तीसरा भी जीत जाती, तीसरा मेडल भी उसका चौथे रैंक पे कटा, जिसका मतलब हमारे पास परफॉर्मेंसेस हैं इस तरह के। इस तरह से आगे भी देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं बहुत शॉर्ट में जाता हूं पढ़ के की जगह। मोनिका बत्रा हैं टेबल टेनिस में, हम लोग कभी वर्ल्ड लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, एशिया पे हैं हम, लेकिन मोनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में चली गई, मैंने परफॉर्मेंस बढ़ा, प्लेयर अच्छी है। इसी तरह से बहुत सारे प्लेयर हैं, स्वप्निल कुशाल भी हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, और इसी तरह से आप देखेंगे 50 मीटर राइफल में इन्होंने भी ब्रोंज जीता, जो कि बहुत गरीब घर से आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के कारण। अगर आप तीरंदाजी की बात करें तो भी इंडिया का पोजीशन एशिया में तो अच्छा था, वर्ल्ड में हम नहीं अच्छा जा पा रहे थे, लेकिन इस बार धीरज बोपापा देवरा और अंकिता भगत ने मिश्रित में चौथे स्थान पर रहकर, मैंने सेमीफाइनल में हारी, वो अच्छा किया परफॉर्म, एशिया में अच्छा है तीरंदाजी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे हम ठीक से नहीं जा रहे हैं। हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है बहुत कम हम लोगों को दुख होता था, मुझे खासकर चूंकि मैं हॉकी से ही शुरू हुआ, कि हम एक बार सपना कर अपने भगवान पूछते तो मैं यही बोलता कि यार हमारा दो सपना भगवान आप पूरा कर दे, तो इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाए। तो मेरा अपना च्वाइस है कि स्पोर्ट्स को मैं भापता हूं हमेशा। इस बार भी इंडिया परफॉर्मेंस बढ़ते गया हॉकी का, कारण क्या था पूरी टीम को आप एनालाइज करेंगे। इंडियन टीम को 10 साल से योगा और मेडिटेशन का पावर दिया जा रहा है, कंसंट्रेशन जा रहा है। होता कहता हॉकी टीम में, इंडिया टीम अच्छा खेलती थी लेकिन लास्ट में जाके लास्ट के जो 7-8 मिनट हैं डिफेंस करने में उलट जाती थी। इस बार गलती है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, पिछली ओलंपिक में भी नहीं किया। लास्ट में गोल पड़ जाता था इनके ऊपर, 2-0 से आगे चलना है, बाद में 8-10 मिनट में अपोनेंट गोल कर देता था और ड्रॉ हो जाता। इस दो मैचों को इस बार इसने फाइनल में जीता और 52 ईयर बाद ऐसा हुआ कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया। ऑस्ट्रेलिया अगर आप खेल के व्यू से जाएं तो जीत हार कोई बहुत माने नहीं रखता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कहा गया बहुत टफ टीम, वर्ल्ड की टॉप टीम है, जिसके आगे हम कहीं नहीं टिकते थे। और जब मैच रहता था तो हम लोग थोड़ा सा क्रैश हो जाते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया से पड़ गया है, उलट जाएगा। इस तरह से लक्ष्य सेन को भी आप देखेंगे, बैडमिंटन का टॉप हीरा है इंडिया का, कहीं से कोई डाउट नहीं, मेडल नहीं जीता, लेकिन आप उसके गेम को देखेंगे तो इतना बढ़िया प्लेयर है वर्ल्ड लेवल का कि कहीं उसके आगे वर्ल्ड में बहुत इक्के दुक्के लोग टिकते हैं। लेकिन एक ऐसे आदमी से पड़ गया पाला जो वर्ल्ड चैंपियन था, उसको सेमीफाइनल में हार गया, लेकिन गेम बहुत अच्छा गया, परफॉर्म किया उसने। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इसी तरह से अमन शेरावत हैं, तलवारबाजी में हम कभी भी नहीं अच्छा जाते थे, तलवारबाजी में हमारी पोजीशन, कभी हम ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं करते थे, लेकिन एक लेडी पिछली बार 1981 में भवानी देवी ने क्वालिफाई किया ओलंपिक को और एक मैच जीत भी गई वो। इस तरह से उसका मत कह सकते हैं कि हम उसमें भी 17-18 गेम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे गेम हैं और हम हमेशा जो है उसमें खेलते गए। इसी से आप देखेंगे अभी पैरा ओलंपिक को मैं लेता हूं शॉर्ट में। पैरा ओलंपिक में भारत की स्थिति काफी सुधरी, आप देखेंगे 2020 के पैरा ओलंपिक को मैच ले रहा हूं कि वो भी एक अजूबा चीज ही है, क्योंकि पैरा ओलंपिक को आप देखेंगे तो दुनिया में अगर आश्चर्य देखना है तो कभी खेल देखते ही होंगे तो आप ट्रेंसेस पैदा करें और पैरा ओलंपिक देखें तो असंभव है। जिसके पास आंख नहीं है, आई है नहीं है, वो स्विम कर रहा है तो रेस स्विमिंग में है और जीत रहा है। जिसके पास हाथ नहीं है, तीरंदाजी में वो बाण चला रहा है। जिसके पास पैर नहीं है, बैडमिंटन खेल रहा है और एथलेटिक्स में है। तो ये सब दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा चीज है, सब चीजें असंभव है, लगता चाहिए असंभव हो, लेकिन सबका कारण मेडिटेशन नहीं है, कायदे से जोड़ा जाता है। सब कहीं ना कहीं दृढ़ थे और सभी का अच्छे घर से नहीं है, कोई मध्यम वर्गीय या उसके विलोही। तो उसमें भारत का पोजीशन 19 मेडल जीता था पिछली बार इंडिया ने। इस बार इनका परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनको रिलीफ दिया, कहा यार इसको अच्छा हो, 25 का टारगेट किया गया था, 25 मेडल का। संयोग से इंडिया भी एक घंटा दो घंटा पहले क्रॉस कर गई, 26 मेडल इंडिया को मिले पैरा ओलंपिक में, जो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। टारगेट पहली बार हमने देखा कि इंडिया में स्पोर्ट्स ने क्रॉस किया, मतलब जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ, इसको निगेटिविटी में मत लीजिएगा, क्योंकि एक परफॉर्मेंस है, ये भी याद करने का क्षण है कि इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट, मैं किसी दल का मुरीद नहीं हूं, लेकिन कहीं भी आप ध्यान देते हैं तो रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि कमजोरी हमारी अपनी है, हम कोई चीज नहीं कर पा रहे तो मेरी कमजोरी है, एक कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। इसी तरह से 26 गोल्ड जीते हम, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 12 ब्रोंज, इसका मतलब कुल 27 मेडल अच्छे मेडल हैं। क्रिकेट टीम को आप लें इसी तरह से तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे अजूबा चीज भी हैं मेडिटेशन की, अगर आप पावर को देखें तो। जैसे मैं ध्यान दे आपको बताता हूं, बहुत शॉर्ट एक मिनट और लूंगा, कुछ खेल के जो रोचक तथ्य हैं भारतीय खेल को ही लेते हैं, जिसमें योगा या कह सकते हैं मेडिटेशन या एकाग्रता के लिए प्रयास किया गया तो रिजल्ट क्या आया। 83 में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन होती है क्रिकेट में, 1983 में, पूरी टीम उसके पहले की स्थिति यह थी कि क्रिकेट में कोई चांस नहीं लगता था कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन होगी, कोई भी सट्टा लगाने को नहीं होता था। एक इंग्लैंड से सिख युवक ने देखा कि हमारी कंट्री पे कोई दांव नहीं लगा रहा, 16:1 का शेयर था, उसने लगा दिया, अपना घर भी गिरवी रख दिया 16:1 में, कि इसलिए कि हम इंडियन है, जीते ना जीते हम लगाएंगे, बिक जाएगा। और ठीक रिजल्ट हुआ उल्टा। कारण क्या था? कपिल देव पूरी टीम एकाग्रता में विश्वास करती थी,
कैप्टन बहुत पॉजिटिव थे उसके, कपिल देव, और उन्होंने टीम को, औसत टीम थी, सच्चाई ये भी है, औसत टीम थी, बहुत स्ट्रांग टीम नहीं थी, लेकिन उसको इस तरह से उसने बदल दिया कि सब एकाग्रता में एक दूसरे के गुत्थी में आ गए, इस तरह से होते रहा। फिर आप देखिए, दूसरा मैंने जो देखा, हमारे एक प्लेयर हैं, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, गोरखपुर के सैयद मोदी, इन अब नहीं रहे, 7 बार के नेशनल चैंपियन थे, नेशनल चैंपियन 7 बार के, पहली बार ये जब खेलने गए तो इनके साथ पड़ा डेनमार्क में मुकाबला, मार्टिन फ्रास्ट थे, वर्ल्ड चैंपियन था मार्टिन फ्रास्ट, कहीं उसके आगे, इसने देखा 3 बजे मैच है, 1 बजे वो प्रैक्टिस करने लगा, वार्म अप होने लगे, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना बड़ा प्लेयर सैयद मोदी, और जो मैंने अपने आंख से तो नहीं देखी, उसी के मुद्दे सुनी और ये न्यूज़पेपर ने भी छापा, बेहोश हो गए कि जब अभी वार्म अप हो रहा है 2 घंटा पहले, हमारे इंडिया में कहा जाता है वार्म अप 15-20 मिनट बहुत है, मतलब थोड़ा स्टेमिना बचा ले, आगे मैच खेलना है, वहां उसने 2 घंटा पहले जब देखा मार्टिन फ्रास्ट को जंप करते, बेहोश हो गया ये, तो बाद में किसी तरह से पहला मैच वो बचा नहीं पाया, पहले ही मैच हारे, उसके बाद इसको लगा तो कोचेज ने बहुत तो ये किया कि यार इसका बड़ा हुआ है, प्लेयर तो बहुत अच्छा है लेकिन आ जा रहा है प्रेशर में, उसने अच्छा खेला और उसके बाद 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन, एकमात्र प्लेयर सैयद मोदी गोरखपुर के ही थे जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे। इसी तरह से आपको और भी उदाहरण देते हैं, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लगेगा, ऋषभ पंत, क्रिकेट के विकेट कीपर इंडिया के, जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने कहा कि मेडिकल ने कहा था, मेडिकल साइंस के लोगों ने, कि आप नहीं खेल पाएंगे 3 ईयर, इस तरह के एक्सीडेंट में निकल नहीं पाएंगे, मतलब 3 साल इनको आराम करना है, करना ही करना है। आप देखिए ये वर्ल्ड कप जिताने में ऋषभ पंत एक बहुत बैकबोन रहे, उस विकेट कीपर ने जो कैचेस लिए, जो परफॉर्म किया बैटिंग का अच्छा रहा। तो मेरा अपना अनुरोध यही है कि ये आपके कंसंट्रेशन के लिए, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स के विषय में बात करेंगे, 1 मिनट में ही हम अपनी बात को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि मैं खेल का आदमी हूं, आपने माइक थमा दिया है हमें तो देखिए, खेल का इंकरेजमेंट हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाना चाहिए, खेल एक इम्पोर्टेंट है हमारा नेट, खेल अब कोई छोटा मोटा खेल मात्र नहीं है, अब खेल किसी कंट्री का पावर हो गया है, पावर, अगर आप खेल में पावरफुल हैं तो माना जाता है कि बहुत कंट्री यार रिच, ये कंट्री बड़ी स्ट्रांग है, छोटी छोटी कंट्रियां जो मैप भी आप वर्ल्ड लेवल पे नहीं बना सकते हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं 1-2 इवेंट के कारण, कोई रेसिंग में है, कोई एथलेटिक्स में है, कोई बॉक्सिंग में है, उसका जो मैप नहीं बना सकते उनको भी लोग जानते हैं, तो हम लोगों को खेल के लिए थोड़ा इंकरेज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम गार्जियन हैं या खेल नहीं सकते हैं ग्राउंड में तो नहीं करें, जैसे स्कूल्स में है, हमारे कमजोरी क्या है, एक इंटरनेशनल बहुत सबसे इंडिया वर्ल्ड का टॉप जो कहा जाएगा कम्युनिकेटर मीडिया का स्पोर्ट्स का, उसने कहा 10,000 घंटे अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल हो जाएंगे, 10,000 घंटे आप जोड़िएगा तो 10 से 11 साल से शुरू हुआ 20 साल तक 19 साल तक जाए तो 6-7 घंटा रोज प्रैक्टिस, तो इसका मतलब हमको स्कूल्स के लिए कोई बच्चा खेल रहा है कभी मत रोकिए, हम देखते हैं जनरली लोग रोकते हैं आज के एज में, बस्ता इतना ज्यादा रहता है कि उसी में सब प्रचार रहते हैं, फिजिक्स पढ़ रहा है कि नहीं, तू केमिस्ट्री पढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन खेल को कभी मत रोकिए, खेल एक बहुत बड़ा पावर है, अगर आप ग्राउंड पर जाते हैं तो मेरा दावा है कि ग्राउंड का लड़का इतना शार्प होता है ब्रेन कि 2 घंटा भी 3 घंटा भी पढ़ रहा है अगर कॉन्सेंट्रेट होके तो 7-8 घंटा वाले को मात दे देगा, क्योंकि ब्रेन बहुत अच्छा होता है, फिट है, कहा गया आपके अंतर्राष्ट्रीय ऋषि विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर हमको गीता पढ़ने के जगह फुटबॉल खेलने दिया जाए तो हम ज्यादा खुश होंगे, उनका स्टेटमेंट था ये कि मतलब फिटनेस जरूरी है, तो कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको आप खेलने दें और उसको बढ़ाएं, ऐसा भी नहीं बैटी थमाएं, क्योंकि आजकल जनरली होता है कि आईपीएल जब शायद लोग बैटी थमा देते हैं, बहुत सारा कहो कि कुछ नहीं तो तू जा पहले ग्राउंड में, ग्राउंड लौट ले, एक राउंड अगर वो लड़का बच्चा दौड़ता है तो कभी चश्मा नहीं लगेगा हम लोगों की तरह, कभी मजबूत कमजोर नहीं होगा, कुछ न कुछ खेलेगा ही वो, बाद में उसको इवेंट थमा दें जो उसका शौक हो, लेकिन एक ग्राउंड या ग्राउंड कम से कम ग्राउंड में जाए। फिर इसी तरह से है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, हम एज ए गार्जियन या एज ए कम्युनिकेटर बात कर रहे हैं, बढ़ावा दें, टूर्नामेंट है चल यार ले, कोई आ गया डोनर्स के लिए 100-200 जो भी हो सकता है अपने सर अपने कैपेसिटी में उसको दें, इन्हें क्या डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट है सब ऐसे कराते रहते हैं, क्योंकि हम लोग में है क्या, इंडिया में हमने देखा हर चीज में अपने को कहता है आदमी नेशनल या इंटरनेशनल। हम नेशनल कोच हैं, नेशनल राइटर हैं, इंटरनेशनल हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट को आप बढ़ा दें, डिस्ट्रिक्ट यूनिट पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं या किसी चीज को बढ़ा दें, जितना गांव गुराव ब्लॉक या जिला पे प्लेयर हैं या किसी भी चीज में आप देखेंगे, साइंस को भी देखेंगे और कोई भी चीज में सबसे ज्यादा प्लेयर हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई भी टूर्नामेंट को एज ए स्पोर्ट्स कम्युनिकेटर या आप उसको या प्रमोटर या आप उसको बढ़ावा दें। फिर खेल संगठन के कोई टूर्नामेंट होते हैं जरूर देखें उसको। इसी तरह से है प्रैक्टिस के लिए कोई प्लेयर को अगर कहें 4-5 घंटा प्रैक्टिस करे, लेकिन थोड़ा मेडिटेशन या वेट का अपना कम करना ज्यादा करना जो भी उसका अपना रिक्वायरमेंट है पूरा करे, तो हम कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीडिया एक्सपोजर का एक यूज है आजकल के प्लेयर, चूंकि यहां तो कम है दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हर चीज में मेरा फोटो आ जाए और यार न्यूज़पेपर में आ जाए, इससे चक्कर में रहने से कोई फायदा नहीं है। नेशन पे अगर आए तब आप फोटो तो खिंचाए तो मजा है, अपने जिला में जाना कोई तो क्या जाना, हम तो ये समझते हैं बढ़िया से जाने तो बढ़िया परफॉर्म करें, तो पहले ध्यान उधर देना चाहिए। इसी तरह से कोचेज को जो नेशनल प्लेयर हैं या स्टेट लेवल के प्लेयर हैं या सीनियर प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि खेल कहें सेमिनार करें ग्राउंड पे गए ही नहीं, सारा कमरे में ही हो गया, ग्राउंड पे जरूर जाएं। प्लेयर स्पोर्ट्स के विषय में आप जानते हैं, जूनियर खिलाड़ी को बताएं अपने जो भी इवेंट हैं आपके, हॉकी फुटबॉल जिमनास्टिक एथलेटिक्स, यार ऐसे कर तेरा उछल नहीं रहा है, पैर ठीक नहीं है या तेरे ये कमजोरी है, तो उसके बाद का ध्यान नहीं दें, निगेटिविटी पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि जहां हम निगेटिव जाएंगे वहां गड़बड़ होगा। हर जगह का माहौल ठीक नहीं है, इंडिया का मेन चीज है हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उन चीजों में नहीं जाएं और हम उसको बढ़ा। सिलेक्शन में कभी भी डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान दें कि हमारा बच्चा खेल रहा है डिस्ट्रिक्ट में आए, सेंट्रलाइज आप डिस्ट्रिक्ट को करें, नेशन इंटरनेशनल को कभी मत करें शुरुआत में। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप अच्छा खेलेंगे या अच्छा प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझिए अपनी मॉरल ड्यूटी से पूरा है। खेल को मिसलिए करते हैं बहुत स्ट्रांग कि अब तो खेल को ही टेक्नोलॉजी का भी पार्ट माना जाता है कि यार इसका साइंटिफिक अप्रोच नहीं अच्छा है तभी ये कंट्री फेल है। तो खेल में सब कुछ समाहित है। माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, धन्यवाद आपको, आप सभी को सुनने के लिए।
थैंक यू संजय भाई जी का, जो आपने महत्वपूर्ण की पॉइंट्स बताए खिलाड़ियों के जीवन में, क्योंकि कहते हैं इंसान पसीना बहाता है तो लिबास बदलता है, लेकिन जो मेहनत का पसीना बहाता है वो इतिहास रचता है। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के साथ साथ मेडिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद भी खिलाड़ी रही हूं, मैं 5 बार नेशनल खेल चुकी हूं एथलेटिक्स में, मेरे 100, 200, 400 इवेंट्स थे मेन, जिसमें 100 मीटर मेरा 12 सेकंड में था। कुछ ऑब्स्टिकल्स आए जिंदगी में, मगर ये ऑब्स्टिकल्स आना हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से मैं जुड़ी, ये ऑब्स्टिकल आए, ऑब्स्टिकल आया तो मैं राजयोग मेडिटेशन से जुड़ी। राजयोग मेडिटेशन सेंटर लिखा था, आई थॉट कि ये एक्सरसाइज यूनिक सी लग रही है, इसको सीखना चाहिए, बाकी तो सब आती है, स्ट्रेंथिंग स्ट्रेचिंग सब आती है, लेकिन ये कुछ यूनिक सा टॉपिक लग रहा है। तो जब पता चला राजयोग का मतलब है मेडिटेशन, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के उनसे शक्तियां लेना, तो ये सोचा ये नॉलेज तो बहुत यूजफुल है खिलाड़ियों के लिए, मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हेल्थ एंड फिटनेस का कोर्स किया, ये नॉलेज स्प्रेड करने के लिए कि ये नॉलेज मैं कोचेस को और खिलाड़ियों को दे सकूं। तब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूं और स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन का हम लोग कोर्स कराते हैं, माइंड पावर ट्रेनिंग देते हैं। तो जो हमें मिला है हम चाहते हैं आपको भी मिले और आपके द्वारा खिलाड़ियों को भी मिले। तो इसी के साथ आपके लिए वोट ऑफ थैंक्स करेंगे सुरेंद्र भाई जी, और 6 बजे प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई जी का क्लास है, कोई भी मिस ना करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड वेरी इंस्पिरेशनल क्लास। तो वोट ऑफ थैंक्स करेंगे सुरेंद्र भाई जी।
ओम शांति। एक दो मिनट, मैं वही बोल रहा था कि एक दो मिनट है अभी, किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज आइए।
सर आफ्टर लिस्टिंग टू the stalwarts on the dais, I just want to share my feelings here. Sir, hamara desh mein skill ka koi kami nahi hai, sir. Players ka koi kami nahi hai. It's my personal experience. There is some kami kis mein hai? Kami badon mein hai, sir. Badon mein, selectors mein. I'm sorry to say this. I don't know how many of you agree with this, but we see these news on the newspaper everywhere in India. And we have, how many crores of us are? How many crores are, population we have? 130. And the number of medals? Look at the plight, okay? She was mentioning, sister was mentioning, she was also one of, sometime back she was also a player, and she took up this spiritual path to spread the spirituality and ethics. That's very nice to hear. And this subject, it's a very vast subject, very big subject, spirituality and ethics. This should be taught to everybody, not just the children. Okay? Not just the children. If you make sports and games as a religion, Indians believe in religion. We don't believe in skills. We don't believe in becoming what? Helpful to others. But we believe in becoming a religious person. I'm a religious person. I'm a Hindu. Okay? I feel proud of about that. But I mean to say here is, let us spread that ethics among all. Okay? I want everyone, I don't know how many of you accept this, but still I want to say this. Please join our hands. Okay? Please join our hands. Let us do this. Let us spread the ethics and spirituality all over India to the people, from childhood to the top man, whoever is there. Okay? Thank you so much for the chance.
Thank you, brother. Bas abhi pura kare. Aur kuch kisi ko? Keval ek minute mein aaiye aur jaldi se bataiye.
Okay, I have quite different perspective of sports, having worked on the ground. और मैंने ज्यादा काम किया गोपीचंद अकेडमी अभिनव बिंद्रा के साथ और नागापुरी रमेश हमारे एथलेटिक्स कोच है उनके साथ. एक तो आई फाउंड स्पोर्ट्स इज ऑलरेडी वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस. इट इज ऑलरेडी एथिकल बिकॉज इट इज प्लेस विद इन द डिफाइंड रूल्स. और इसका ना हमें प्रोसेस थोड़ा सिंपल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमें था कि हम बात करें एथलीट कोच वहां पर है तो मुझे एक एथलेटिक प्रोग्राम ने शुरू किया. एथलीट सेंट्रिक होना चाहिए. सिंपल होता है, एथलीट सेंट्रिक होना चाहिए, एथिकल चॉइस है. और आज तक किसी स्टेट से मैंने पूछा इवन डीजी से कि आपका तनख्वाह पहले जाता है या स्कॉलरशिप एथलीट का, देयर इज नो आंसर. तो एथिकल चॉइस ना बहुत बेसिक है हमारे यहां पर. एथलीट को फर्स्ट लेके जाना, एथलीट को केयर करना. स्पेशली जब मैं गोपीचंद अकेडमी गया तो फीमेल्स को उससे पहले गोपी सर चेतन सर मेल्स चैंपियन थे. उनके वहां प्रोसेस था कि अगर आप लड़की का हाथ पकड़ते हो तो आपको परमिशन लेना होता है. कैन आई होल्ड योर हैंड टू टीच यू बैडमिंटन. ऐसा एसओपी है जो किसी ने सोचा नहीं आज तक, जस्ट टू मेक द फीमेल कंफर्टेबल. तो मैं सिर्फ वो नोट करना चाह रहा हूं कि वी नीड टू मेक ब्रिंग मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. एथलेटिक्स में हमारी लड़की दीप्ति, उसका पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया. वो तीन टाइम खाना भी नहीं खाती थी. उसको उसके वारंगल से कंडक्टर को पैसे देके उसको वहां बुलाया था हमने. एंड वन थिंग विच वी सेड कि वो आए मेरे पास कि हमें खाने नहीं खा पा रहे सर, हमें दो टाइम खाना मिलता, अब तीन टाइम दे रहे हो, हम रिजल्ट कैसे देंगे. थिंग वी टोल्ड जस्ट हाउ एथिक्स लुक लाइक, कि हम आपको निकाल नहीं रहे. and we gave them a statement, you are a female first, mother second, athlete third. It doesn't matter to us. Ab medal mat do mein. But when you are with us, you should be a healthy female and mother, a future mother for this country. So I just want to add this small point ki humko na ye thoda aur deep sochna chahiye, finding ground level solution and always looking from the beneficiary of the system. Yeah, just thought very small.
Thank you. Hum aap dono bhaiyon ne jo bahut achhi baat batai, hum aapki bhavnaon ko samajhte hain, qadar karte hain. आज के सेशन के अंदर संजय भाई जी ने एक बहुत बात अच्छी बताई कि हर जगह का माहौल खराब है, हर जगह का माहौल खराब है, हमें सकारात्मक रहना है. तो मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ आ जाता है. अभी बहुत अच्छा सेशन इसके पीछे हमारे गिरीश भाई जी का होने वाला है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे. तो आप सब यहां पधारे, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना समय दिया, स्टेज पर बैठे हुए महानुभाव को सुना. और स्टेज पर भी आज ऐसे महानुभाव बैठे थे जिन्होंने पूरे स्पॉट को अपने जीवन के अंदर चारों तरफ से, चारों एंगल से देखा हुआ है. उसमें हमारे सबसे पहले रविंद्र भाई जी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से लेकर पूरे हिस्ट्री को याद कराया, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं रविंद्र भाई जी का. उसके बाद हमारे गुरुवान सिंह जी, जिन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही कि जो सवेरे उठता है वो सारे दिन में गलत काम नहीं कर सकता. पूरी स्पिरिचुअलिटी इसमें आ जाती है एक ही सेंटेंस के अंदर. हमारे संजय भाई जी ने जो कहा वो मुझे थोड़ा एडवांस में कह देना पड़ा, लेकिन एक राइटर का दिमाग कैसा होता है, देखो इन्होंने ओलंपिक से लेकर कपिल देव से लेकर कहां कहां हमें नहीं घुमाया. तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. और हमारी लवनीत बहन जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया. मेडिटेशन से ही रिजल्ट आता है. मैं खुद एक योगा टीचर हूं, फिजिकल योगा टीचर हूं, और मेडिटेशन मेरा ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड मैं पहले था, बाद में मैंने योगा ज्वाइन किया. गुजरात गवर्नमेंट से मैंने कोर्स वगैरह करके अभी गुजरात गवर्नमेंट में योग ट्रेनर के रूप में मैं काम करता हूं. लेकिन जहां पर भी जाता हूं तो एक बात मुझे हमेशा बतानी पड़ती है कि केवल फिजिकल योगा है वो संपूर्ण योग नहीं है. जब तक आप उसमें मेंटली ऐड नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट मिलने वाला नहीं है. मैंने देखा है लोग डायबिटीज की गोलियां भी खा रहे हैं और 10-10 किलोमीटर दौड़ भी रहे हैं, यानी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बीमारी कहां है. दौड़ते वक्त भी उनके दिमाग में सोच कौन सी चलती है, जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है. तो ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन हम अभी योगा के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जहां जहां पर हमारे योगा सेंटर चलते हैं वहां कंपलसरी हमने करवाया है कि आप मेडिटेशन भी सीखिए. तो जो भी कोचिस होते हैं वो ट्रेनर को लेकर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आते हैं, और सबका ट्रेनिंग के साथ साथ 7 डेज कोर्स भी उनका वहीं होता है. तो वो थोड़ा बहुत कराते हैं और फिर अलग अलग सेंटर, अलग अलग उनके सेंटरों पर जाकर भी हम कराते हैं. तो लवनीत बहन जी ने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया, हम उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. और हमारी संगीता बहन जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, पूरे स्टेज से लेकर आप सबको एक सूत्र से बांध के रखा, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं. और जिनका शुक्रिया पहले अदा करना चाहिए था, परमपिता परमात्मा, उनको आज थोड़ा हम भूल गए हम, लेकिन भूलेंगे तो नहीं, बाद में हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कुछ भी प्रोग्राम की सफलता है वो सफलता का आदर हमारे निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ही है. हम तहे दिल से परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हमारी 3 बहनें जो हमारी सेवा में उपस्थित रही, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. और हमारे जो म्यूजिक प्ले करने वाले भाई जी, जो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर मेरे से कुछ मिसिंग हो रहा है तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.